نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلتے ہیں تفسیر کی طرف، سمجھنے کی طرف ان آیات کو، کہ یہ آیات کتنا ڈیپ میننگ رکھتی ہیں. یہ الف لام میم، ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات. مقطعات مینس جو قطع کیے گئے ہیں، کاٹے گئے ہیں. کاٹ کاٹ کے پڑھنا، ان کو علم کر کے نہیں پڑھنا، الف لام اور میم کہہ کے پڑھنا، ڈس جوائنٹڈ لیٹرز. وجہ کیا ہے؟ جوائن نہیں ان کو کرنا. قرآن کریم میں کئی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں، اور اکثر وہ صورتیں مکی صورتیں ہیں، سوائے یہ سورۃ البقرہ اور آل عمران، یہ مدنی صورتیں. ادروائز آپ دیکھیں گے کہ اکثر مکی صورتیں شروع ہوتی ہیں حروف مقطعات کے ساتھ. 29 صورتیں تقریباً جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ حروف صرف سٹارٹ میں آتے ہیں، کہیں اور پھر بعد میں نہیں آتے، آیتوں کے بیچ بیچ میں. ٹھیک ہے، اب یہ حروف کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، یاد رکھیے یہ بات کوئی نہیں جانتا، مگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ حروف اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کا کوئی مطلب ہے، اور وہ مطلب سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کچھ نہیں بتایا، تو ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا. اللہ کے پاس علم ہے، علم کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں، اور امت میں سے کسی کو نہیں پتا. ہاں یہ ہے کہ اس کے بارے میں کئی اقوال آپ تفسیروں میں ضرور دیکھیں گے، جو صحابہ کی طرف سے بھی اور لوگوں نے بھی اپنے زور لگایا کہ ہو سکتا ہے اس کا یہ میننگ ہو سکتا ہے یہ میننگ ہو، لیکن کوئی بھی چیز اوتھینٹک نہیں ہے نا. جب تک قرآن و حدیث سے نہ پتا ہو کوئی بھی چیز، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاں حتمی یہی اس کا معنی. تو ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے خود نہیں بتایا. لا يعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی تاویل سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. تو بعض ایسی آیات یا بعض ایسی چیزیں آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے جن کا معنی صرف اللہ کو ہی پتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف ان پہ ایمان رکھنا ہے، اور ہمارا یہ ان کے اوپر ایمان ہے کہ جیسے باقی قرآن ہے ویسے یہ حروف بھی ہیں، ان کو بھی ہم پڑھیں گے تو اسی طرح ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، جیسے باقی قرآن کے پڑھنے پہ ملتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کا معنی نہیں ہے کوئی جو ہمیں معلوم ہو، معنی تو ہے لیکن جو ہمیں نہیں معلوم، تو پھر یہ کیوں لائے گئے حروف یہاں پہ، ان کا مقصد کیا لانے کا؟ بہت سارے مقاصد بیان کیے ہیں علماء نے، جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھوں گی. ایک تو یہ کہ عربوں کا یہ طریقہ نہیں تھا بولنے کا، وہ اس طرح سے نہیں بولتے تھے کہ کوئی کلام شروع کریں تو ایسے شروع کریں. جب کوئی ان یوژول طریقے سے کچھ بات شروع کرے تو انسان ایک دم سے متوجہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو. تو ایک وجہ یہ ہے ان کو متوجہ کرنا. الف لام میم جب کہا گیا تو یعنی ایک کیوریوسٹی ہوئی کہ یہ کیا بات، کیا ہے یہ. ٹھیک ہے، نمبر ٹو بات، یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک چیلنج ہے. یعنی یہ حروف وہ ہیں جن سے تم کلام کرتے ہو، انہی حروف سے انسان بولتا ہے نا. اور علماء کہتے ہیں کہ جتنے حروف مقطعات آئے جتنے بھی قرآن پاک میں، وہ سب وہ ہیں، ایسے ہیں کہ وہ تمام مخارج کا احاطہ کرنے والے ہیں. یعنی جو مخارج ہے نا، جیسے یہ آپ آواز نکالتے ہیں جہاں سے، وہ یہ سب ان سب کو کور کر لیتے ہیں. یہ تو تم بھی انہی حروف سے باتیں کرتے ہو نا، اور تم کہتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ انسانی کلام ہے، تو جاؤ تم بھی پھر جا کے ایک کلام لے آؤ. انہی حروف سے یہ قرآن بنا ہے، तुम भी इन्हीं हरूफ से जाओ, जाके कुछ आजमा के देखो तुम कुछ बना सकते हो। ये चैलेंज किया गया। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है, देखिए इंसान की ना जितनी भी एबिलिटीज है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कलील है, चाहे उसका देखना है, सुनना है, कुछ भी, और उसका इल्म भी बहुत महदूद है। जब अलिफ लाम मीम कहा गया तो अब इंसान को समझ नहीं आ रही कि इसका माना क्या है। तो कुरान खोलते ही अल्लाह ताला ने इंसान को आजिज कर दिया कि ये देखो ये तीन हरूफ हैं, बताओ कि इनका माना क्या है। इंसान इनका माना जितने भी तबा आजमाई कर ले नहीं जान सकता इनका माना क्या। जब इंसान गिव अप कर देता है कि मुझे नहीं पता, तो फिर अल्लाह ताला उसको ये बात रियलाइज कराते हैं इससे कि तुम फिर मान जाओ कि तुम्हारा इल्म कुछ नहीं है, अल्लाह के पास सारा इल्म है। जिन चीजों का इल्म अल्लाह ने हमें दे दिया उनको तो हम समझ गए, और जिनका नहीं दिया वो वैसे ही है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी अकल जान ही नहीं सकती कि इन हरूफ का माना क्या है, हम गिव अप करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान खोलते ही इंसान से सबसे पहले ये बात मनवाई है कि तुम कुछ नहीं जानते, वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, तुम फिर मान जाओ ना इस बात को। क्योंकि अक्सर लोग कुरान की तरफ आते नहीं, क्या कहते हैं, हमें सब पता है, और जो बाज कुरान की तरफ आते हैं वो भी क्या सोच के आते हैं, मुझे तो सारा कुछ आता है, वैसे मुझे जरूरत तो नहीं है, सब पता है मुझे। अलिफ लाम मीम पे ही अल्लाह ताला ने बता दिया कि आगे जाने से पहले तुम इस बात को मानो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, अल्लाह को सब पता है, वो जो इल्म दे दे बस तुम्हें उतना ही पता है, जिसका देखो उसने इल्म नहीं लिया तुम जो मर्जी कर लो तुम्हें पता ही नहीं चल सकता। सुभान अल्लाह। तो हम भी पहले मान जाएं मुझे कुछ नहीं पता, अल्लाह को सब पता है, फिर आगे चलेंगे तो कुछ बात बनेगी। और अगर ये माइंडसेट लेकर बैठे हैं ना कि हमें बड़ा आता है, मुझे तो पहले ही बड़ा पता है, वो फिर कुछ नहीं सीखेंगे। अलिफ लाम मीम ने ही हमें समझा दिया कुछ नहीं आता तुम्हें, अगर आता है तो बताओ इसका माना क्या है। अल्लाह अकबर। फिर इसी तरह इसके बारे में ये भी कहा गया कि ये सीक्रेट है अल्लाह ताला की, सीक्रेट जो उसने नहीं बताई किसी को। अच्छा, इन हरूफ के साथ ज्यादातर हमारा क्या रवैया होता है, आपने देखा होगा घरों के अंदर ये हरूफ मुकत्तात की एक तख्ती सी है, वो बना के यासीन तौहा अलिफ लाम मीम इस तरह करके लिखे हुए हरूफ मुकत्तात, और वो एक तख्ती सी घरों में लगाई जाती है, और फिर ऊपर लिखा जाता है हिफाजत के लिए, घर की हिफाजत के लिए, फलां घर में खैर व बरकत के लिए। ये बताएं कि ये कौन सी जगह पे लिखा हुआ है, कौन सी हदीस में, कि इससे खैर और बरकत होती है या क्या होता है। पूरा कुरान ही खैर और बरकत है, और आपने देख लिया सूरत अल बकरा के बारे में हदीस में आ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सब बातें हमें बता दी हैं। जो बातें भी अल्लाह ताला ने आप तक पहुंचाई वो आपने उम्मत से छुपा के नहीं रखी, वो सब बताई। अगर इस तरह लिखने में कोई वो होती कोई चीज ऐसी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमसे छुपानी थी कोई खैर? लेकिन ऐसे कोई चीज हमें हदीस से नहीं मिलती, कोई सहाबा के अखवाल से नहीं मिलती, बस हमने तख्तियां बनाई हुई और लगाई हुई घरों के अंदर। तो ये हरूफ मुकत्तात का ये तो यूजेज नहीं है। तो ऐसी चीजों से फिर बचना चाहिए। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, ذَلِكَ वो الكتاب किताब है। पहले तो ذَلِكَ الكتاب ही ना पूरा एक जुमला है, वो किताब है, एक पूरा सेंटेंस है ना। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जब हम बात करते हैं किसी चीज की जो हमारे सामने हो तो हम कहेंगे हाजल किताब, हाजा ये है किताब, लेकिन यहां कहा जा रहा है वो किताब। वो क्यों कहा जा रहा है जब किताब तो सामने है। अरबी में बाज दफा जिस वक्त किसी चीज की अजमत बयान करनी होती थी तो इशारा बाईद का यूज करते हैं, करीब का नहीं करते, बाईद का, वो किताब। ठीक है, उससे क्या पता चलता है, उसकी बुलंदी पता चलती है, वो जो वो है। नंबर टू बात, ये अल किताब, ये तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जिस वक्त ये उतरी है तो किताब की फॉर्म में तो नहीं उतरी ना, मगर हाँ ये किताब अल्लाह ताला के हाँ लौहे महफूज में लिखी हुई है, वहां पे ये किताब है। और वो किताबी शक्ल में है, जब उसकी तरफ इशारा किया वो किताब, तो असल में लौहे महफूज पर जो लिखी हुई किताब है उसकी तरफ बयान किया गया वो किताब, ये वो किताब है। और अलिफ लाम मीम जब हमने अभी कहा ना, तो अब मैंने आपको क्या बताया कि इंसान को अल्लाह ताला ने आजिज कर दिया कि तुम कुछ नहीं जानते। जब इंसान आजिज हो गया तो अब बताया गया वो है किताब, यानी वो किताब तो इतनी बुलंद किताब है, तुम उस तक पहुंच भी कैसे सकते हो, द लिकल किताब। ठीक है, तो एक तो इसकी अजमत के लिए इशारा बाईद का इस्तेमाल किया गया, दूसरे लौहे महफूज में जो किताब है वो, तीसरी एक और बात, अल किताब किसी है, कैताबा से, कैताबा, और कैताबा का मतलब होता है ऐसी चीज जो इनग्रेव की हो, लिखी हुई हो। और उस जमाने में पेपर पे तो नहीं लिखा जाता था, किस पे लिखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा सुन के फिर कहीं खजूर की छाल पे लिखते थे, कहीं वो स्किन्स पे लिखते थे, एनिमल स्किन्स पे लिखते थे, कभी वो पत्थरों के ऊपर लिखते थे। और इन चीजों पे लिखी हुई तहरीर जो होती है वो मिटाई नहीं जा सकती, वो चेंज नहीं की जा सकती। तो हम आज की नहीं किताब सोचें, हम उस वक्त की सोचें कि वो जो किताबी फॉर्म थी वो कैसी थी, उसमें से कुछ चेंज नहीं हो सकता था। तो ये एक इशारा इस तरफ कि इसमें से कुछ बदल नहीं सकता, कुछ चेंज नहीं होगा। और फिर अल्लाह ताला ने एक इंट्रोडक्शन में ये फरमाया इस किताब के आगे देखें, ला, ला का तो माना हमें पता ही है, नहीं, ला रईब, नहीं कोई शक। पहले हम यहां तक इसको पर वक्फ करते हैं तो क्या माना बनेगा, ला रईब, कोई शक नहीं है इस किताब में। यानी क्या मतलब हुआ, ये वो किताब है जिसको तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो तो जहन में ये बात समझ लेना कि इसमें कहीं पे भी कोई शक का शायबा नहीं। कैसा शक, दो चीजों का शक, ये लिख लें आप, दो चीजों पे शक नहीं। नंबर वन, ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक ना करे, पता नहीं क्या पता अल्लाह का कलाम है कि नहीं, पता नहीं क्या पता कि क्या है, नहीं, ला रईब, नंबर वन ये बात है। नंबर टू बात लिखे, इसमें कोई शक नहीं मतलब क्या, जितनी इसके अंदर बातें आई हैं उनमें कोई गलती नहीं, कोई शक की बात नहीं है, कोई पता नहीं ऐसा है भी कि नहीं, पता नहीं ये बात सही भी है कि नहीं सही, नहीं, हर बात इसमें सही है, कहीं तुम्हें शक ना गुजरे। तो जो रीडर, जो पढ़ने वाला इस किताब को खोले, सबसे पहले तो वो इस चीज के ऊपर ईमान लेकर आए, फिर आगे चले। क्या इन दो चीजों पे ईमान रखना है आपने, बिफोर यू गो अहेड, इससे आगे तो बाद में पढ़ने की बात है ना, पहले अपने जहन में इस बात को बिठा लें, कभी जिंदगी में ये बात ना जहन में आए पता नहीं अल्लाह की तरफ से है भी कि नहीं, या पता नहीं इसकी ये बात सही भी है या नहीं, कुछ किसी एक आयत के बारे में भी ना आए, किसी एक हुक्म के बारे में ना आए, किसी भी चीज को जो अल्लाह ताला ने इसमें बयान की हुई है, कभी आप ये नहीं कहें कि हाँ ये तो वैसे बात कुछ समझ नहीं आती, ये तो कुछ सही नहीं लग रही। नो, इसमें कोई शक नहीं, शक ना कभी करना इसमें। ये हुक्म भी है एक तरह से, ला रही पे कोई शक नहीं इसके अंदर करना तुम्हें। ठीक है, अगर हम यहां तक इसको करके वक्त फिर आगे पढ़ेंगे, फी ही हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें है हिदायत मुत्तकीन के लिए, फिर ये माना बनेगा। और अगर हम ला रोइबा फी पढ़ेंगे तो कोई शक नहीं इसमें, यानी इस किताब में। तो बात एक ही है, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है कि वहां पे वक्त किया तो क्या होगा मायना या वहां पे किया। ठीक है, अच्छा अब हमें यहां तक पता चल गया, जब हम इस किताब की तरफ आए तो दो चीजें हमें बिल्कुल वाजी हो गई। नंबर वन, क्या अलिफ लाम मीम से पढ़ के मेरे पास कोई इल्म नहीं है, मुझे तो ये बात भी नहीं समझ आई कि अलिफ लाम मीम में क्या है, मुझे क्या बातों की समझ है। तो प्लीज अपने तकब्बुर कि मैं बहुत पढ़ी लिखी, मैं तो PhD हूँ, मैंने तो जी फलां जगह से डिग्री ली हुई है, मैं तो हार्वर्ड की पढ़ी नहीं हूँ, मैं इस कुरान को इस तरह पढ़ूंगी कि मैं जरा देखती तो हूँ, जरा चेक तो करूँ इसमें है क्या। इस तरह से नहीं, कुरान करीम के पास आओ तो एक फकीर बन के आओ, मोहताज बन के आओ, जिसको हिदायत चाहिए। घुमंड के साथ ना हो कि मुझे बड़ा पता है, जरा मैं चेक तो करूं क्या है कुरान में। ठीक है, दूसरी क्या बात पता चली, क्यों इशारा बाईद का आया, ये आपको समझ लेना चाहिए क्यों ये आया ला रईब। क्योंकि अगर इंसान कहीं शक में पड़ जाए ना, तो फिर कभी इस कुरान से कुछ पा नहीं सकता। अरे जिस चीज में आपको शक पड़ जाए कि क्या पता पता नहीं सही भी है या नहीं सही, तो आप कहते हैं छोड़ो पर। फिर देखें, कोई किताब आप उठा लें, इवन आप कुरान पाक के नुस्खे उठाएं जिनमें तर्जुमा लिखा होता है, तो उन्होंने भी शुरू में लिखा होता है हमारे तर्जुमे में अगर कहीं आपको गलती प्रिंटिंग में नजर आए, इसमें नजर आए, तो आप हमें इसे मुतले करें। लेकिन अल्लाह का कलाम ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया ला रईबा फी, इसमें कोई गलती है ही नहीं, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, कुछ भी नहीं इसमें गलत, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस जो कि यानी रियलिटी से डिफरेंट हो और आपको ऐसे ही बस बताई जा रही है, पता नहीं सच्ची बात भी है कि नहीं, ये ना सोचना कभी। तो अब प्रिपेयर हो रहा है ना माइंड कि कैसे पढ़ना है इस किताब को, तो मेंटल प्रेपरेशन पहले जरूरी है। एक अदब सिखाया गया कि ये कलाम ऐसे ही नहीं है, जब आप इसको पढ़ने के लिए आते हैं पहले इसका अदब सीखो, फिर उसके बाद इसको पढ़ो, तब आपको कोई फायदा मिलेगा। और अगर अदब नहीं है फिर इससे रहनुमाई भी नहीं मिल सकती, कोई फायदा नहीं उठा सकोगे। तो ये अदब सीख लिया ना आपने, आगे फिर चलते हैं। हुदन, हिदायत है, गाइडेंस है, किसमें, इस किताब की बात हो रही है, लेकिन किसके लिए, लिए मुत्तकीन के, हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। किस चीज में हिदायत है, हिदायत क्या होती है, गाइडेंस, रहनुमाई, राह दिखाना। मैंने आपको एदिना में बताया था कि क्या मतलब होता है हिदायत का। तो जब हमने कहा हिदायत है इसमें, तो किस किस चीज में हिदायत देता है, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। आपकी घरेलू जिंदगी कैसी होनी चाहिए, आपका कारोबार कैसा होना चाहिए, आपने रिश्ते कैसे निभाने हैं, आपने जन्नत में कैसे जाना है, आपने इस दुनिया की जिंदगी कैसे गुजारनी है, आगे आपके लिए क्या है, सब चीजों की हिदायत रहनुमाई इस किताब में मौजूद है। और ये हुदन लिल मुत्तकीन, ये आपको वैसे एक साइड का नोट बता देती हूँ, अगर आपको नहीं भी ये बात समझ आई तो कोई मसला नहीं। हुदन मसदर है, मस्तर में बहुत वुस्सत होती है, और लिल मुत्तकीन, लिए मुत्तकीन की, ये हाल है, हाल है। यानी क्या मतलब है कि एक ये हमें पता बता रहा है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमें बता रहा है कि ये हिदायत जो है कंटिन्यूसली हो रही है, ये ऐसे नहीं है कि हो चुकी बस मिल चुकी जिनको मिलनी थी, अब नहीं, 1400 साल पहले वो सहाबा के लिए हिदायत थी, अब नहीं, नो, कंटिन्यूटी है इसमें। यानी जब भी कोई इसके पास आएगा रहनुमाई लेने के लिए, ये उसको हिदायत देगी, चाहे किसी जमाने में आए, चाहे कोई सदी हो, चाहे कौन सी کون سا وقت چل رہا ہو، چاہے کوئی مسئلہ بھی ہو، جب جب اس کے سامنے آؤ گے یہ آپ کو ہدایت کا سامان دے گی۔ اسی وجہ سے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ قرآن کو کھولیں، آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے تھوڑا ہی آپ پڑھیں گے آپ کو آپ کے مسئلے کا جواب ملنا شروع ہوگا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مجھے کہ وہ جی ہمارے پاس اتنے کوئی پرابلم تھا یا کوئی ایسی چیز چل رہی تھی ہماری زندگی میں، تو وہی اس ویک کی کلاس میں آ گیا۔ یہ نہیں کہ میں کوئی خاص، مجھے تو لوگوں کا پتہ بھی نہیں کسی کے کیا حالات ہیں، کیا نہیں ہیں، کیا اس کے مسئلے ہیں، لیکن یہی تو ہے ہدایت جو آپ کو شروع میں ہی بتا دی گئی کہ یہ رہنمائی کرتی ہے اور ہر زمانے میں کرے گی، اس میں ہر ایک کے مسئلے کے حل ہیں جب آپ اس کی طرف آؤ گے، اس کو غور سے پڑھو گے، اس کو سمجھو گے تو یہ ہدایت دے گی۔ ویسے قرآن کریم میں آتا ہے ہدل للناس، یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ سبق میں کہ ہدایت کس کس طرح کی ہوتی ہے۔ ایک میں نے آپ کو بتائی تھی نا ہدایت، وہ بھی ہدایت ہے کہ جب ہم سے کوئی راستہ پوچھے تو ہم کہیں اچھا فلاں جگہ رائٹ مڑو، لیفٹ مڑو، یہ کرو، وہ کرو، پھر آپ وہاں پہنچ جاؤ گے۔ میں نے آپ کو بتایا نا اسکول کا راستہ کوئی ہم سے پوچھتا ہے، دوسرے ہم کسی سے راستہ پوچھتے ہیں میں نے اسکول جانا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، ہمیں لے کر چلتا ہے، وہاں تک پہنچا کے آتا ہے، ایک وہ بھی ہدایت ہے نا۔ تو یہ گائیڈنس، یہ جو قرآن ہے، یہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، ساری انسانیت کو بتاتا ہے، لیکن جو متقی ہے وہ اس راستے پر چل بھی پڑتا ہے۔ دیکھیں نا، اب آپ کسی کو راستہ بتاتے ہیں تو اب آپ نے اچھی طرح اپنی طرف سے بتایا، کئی دفعہ آپ جی پی ایس لگاتے ہیں، وہ آپ کو راستہ بتا رہا ہوتا ہے، آپ نہیں ادھر جاتے تو وہ بولتا جاتا ہے نا۔ تو اب ہماری مرضی ہے ہم راستہ اس سے سمجھیں یا اس راستے پہ چلیں یا نہیں چلیں، رائٹ۔ تو قرآن ساری انسانیت کو راستہ بتاتا ہے، لیکن اس راستے کو فالو کون کرتا ہے؟ جو متقی ہوتا ہے۔ ساری انسانیت نہیں کرتی، یعنی متقی ہونا سمجھ لیں کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے ہدایت لینے کے لیے۔ راہ تو بتائے گا، وہ جی پی ایس جیسے بول رہا ہے، ہم نہیں سننا چاہتے اس کی، نہیں ادھر کو جاتے، تو یہ راہ تو بتا رہا ہے ساری انسانیت کو، لیکن سب نہیں سنتے اس کی بات۔ سنتا کون ہے؟ متقی صرف سنتا ہے۔ کون ہوتا ہے متقی؟ اس کا مطلب ہمیں متقی بننا پڑے گا اگر ہم نے اس قرآن سے ہدایت لینی، کیونکہ یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ یہ تو سمجھ لیں پری ریکوئزٹ ہے۔ جیسے آپ کالج وغیرہ میں جاتے ہیں، پھر آپ ان کو کہتے ہیں ہم نے ایڈمیشن لینا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی آپ نے پری ریکوئزٹ پورے کیے ہیں، یہ سبجیکٹ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، اگر پڑھے ہوئے ہیں تو ہم آپ کو اس میں ایڈمیشن دیں گے۔ تو آپ کہتے ہیں پڑھنے کے لیے تو آئے ہوں، لیکن پڑھنے کے لیے تو آپ آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کے پاس کچھ بیس ہونی چاہیے، یہی یہاں پہ کہا جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں متقی تو بننے کے لیے آیا ہوں، میں قرآن سے میں متقی تو بننا چاہتا ہوں، لیکن جب تقویٰ کے بھی لیولز ہیں، جب آپ قرآن سے ہدایت لینے آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پری ریکوئزٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، تب آپ کو یہ قرآن اور ہدایت دے گا، راہ دکھائے گا، سمجھ آئی؟ تو اب دیکھتے ہیں متقی کیا ہے۔ متقی ہے تقویٰ سے، جو تقویٰ پہ چلنے والا ہے وہ متقی ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو چونکہ بار بار قرآن پاک میں آئے گا، بار بار آئے گا، تو ہم اس کو ایک ہی دفعہ کیوں نہ سمجھ لیں بات کو۔ اور ایک دفعہ کہیں میں نے آپ کو جو بتایا تھا، چھوٹی سی آپ ایک اپنے لیے ڈکشنری بنائیں، یعنی ایک نوٹ بک بنا لیں جس کے اندر آپ ایسے سارے لفظ لکھ لیں جو بار بار قرآن میں یوز ہوں گے، اور پھر جب آپ کو تقویٰ کا دیکھنا ہے، کیونکہ یہ تو آخر تیسویں پارے تک تقویٰ کا لفظ آتا رہے گا، قرآن پاک میں بہت دفعہ آیا، تو جب آپ تقویٰ کو پھر دیکھیں گے پھر بھول جائیں گے، تو پھر کیا فائدہ؟ تو اگر آپ کے پاس وہ کہیں لکھا ہوگا تو آپ جلدی سے کھولیں گے اپنی نوٹ بک اور دیکھیں تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے۔ آج آپ کو ایک نئی طرح سے تقویٰ کا بتاتی ہوں۔ جب گھوڑے کو آپ نے دیکھا، گھوڑے کے نیچے اس کے پیروں کے اندر وہ انہوں نے ہارس شوز لگائے ہوتے ہیں، وہ لوہے کے جو لگائے ہوتے ہیں اس کے پیروں کو محفوظ رکھنے کے لیے، تو اگر اس کے پاس وہ نہ ہوں उसके कहीं लूज हो जाए। फिर वो पता है चलता कैसे, बड़ी एहतियात से चलता है, वो अपना पैर ना देख देख के रखता है कि कहीं कहीं ऐसी जगह ना पैर पड़ जाए कि जिससे उसके पैर जख्मी हो जाए। इसको कहते हैं घोड़े ने तकवा इख्तियार किया, घोड़ा तकवा से चल रहा है। कुछ समझ आई? यानी तकवा विकाया से है, मतलब है कि फूंक फूंक के कदम रखना, बहुत केयरफुली चलना, बहुत कॉन्शियसली जिंदगी गुजारना। एक आपको हदीस से मैं इस बारे में और बताती हूँ, उससे आपको थोड़ा और ज्यादा समझ आएगा। हजरत उबई बिन काब से हजरत उमर बिन खत्ताब ने पूछा कि तकवा क्या चीज है। उन्होंने कहा कि कभी आप एक किसी कांटेदार रास्ते से गुजरे हैं? फरमाया हाँ। तो कहते हैं फिर कैसे गुजरते हैं? कहते हैं अपने कपड़ों को समेट के। फरमाया बस यही तकवा है कि आप कपड़ों को जिस्म को बचाते हुए गुजरते हैं ना ऐसे रास्ते से। सोचें आप भी किसी तंग गली से जा रही हो जहां पे कांटे वाली झाड़ियां हैं, तो कैसे गुजरेंगे? बचा बचा के खुद को गुजरेंगे ना, बस यही तकवा। यानी इंसान जिंदगी कैसे गुजारे, अपने आप को बचा बचा के, कि कहीं मेरा दामन ऐसी जगह ना उलझ जाए कि मैं तार तार हो जाऊं। गुनाहों से बच बच के जिंदगी गुजारने का नाम तकवा है। सारी जिंदगी की एक ये स्ट्रगल है, ये एक दिन का काम नहीं है कि आज मैं तकवा लेके बैठी हूँ, कल का तकवा का पता ही नहीं कहाँ है। नहीं, ये स्ट्रगल है, इंसान लगा रहता है, क्योंकि एवरी डे आपके सामने चैलेंजेस आते हैं ना। तो एवरी डे केयरफुली कॉन्शियसली जिंदगी गुजारनी कि ये करूंगी तो अल्लाह नाराज ना हो जाए, वो करूंगी तो ऐसे ना हो जाए, अरे इसका तो बड़ा गुनाह हो जाएगा, इस तरह से करके सारी जिंदगी बस आपने ये इन तूफानों से लड़ते ही रहना। कभी अब अंदर से ख्वाहिशात उठेंगी, कभी कोई शैतान बहकाएगा, कभी लोगों में से शैतान जो है वो आपको किसी तरफ ले जाना चाहेंगे। तो बच बच के जो जिंदगी गुजारना है ना इस दुनिया में रहते, वही तकवा है बस। वो कहते हैं ना दुनिया में इस तरह रहो कि जैसे कश्ती पानी में चलती है। अब कश्ती ने चलना पानी में ही है ना, पानी से अलग निकाल के तो आप खुश्की पे तो उसको चला नहीं सकते, तो उसने चलना तो पानी में ही है, लेकिन एज लॉन्ग एज पानी बाहर है कश्ती से तो कश्ती चलती रहेगी। जिस दिन पानी कश्ती के अंदर आ जाता है तो क्या होता है? कश्ती डूब जाती है। तो ये पानी जो है दुनिया है और कश्ती हम है। जब हमारे हम ये दुनिया बाहर है ना, तो हमने चलना तो इसी में है। जिस दिन ये पानी हमारे दिल में आ जाता है, ये दुनिया हमारे दिल में घर कर जाती है ना, तो बस फिर हम डूब जाते हैं। तो मुत्तकी कौन है कि जो गफलत और जहालत के साथ ना जिंदगी गुजारे, उसकी कश्ती से बाहर ही पानी रहे, अंदर ना आए उसके। तो जब ये दुनिया अंदर आ जाती है ना, तो फिर क्या होता है? अगर तो कोई परवाह ही नहीं रहती, बच बच के चलना क्यों है मुझे, फिर मैं जैसे मर्जी चलूं, जो मर्जी करूं, जिंदगी एक दफा मिली है, ऐश करूं, जी लूं अपनी जिंदगी, खाओ पियो ऐश करो, फिर तकवा किस चीज का नाम है? कहां ये सोच आती है? फिर सोच तो फिर ये होगी ना, पैसा बनाओ, जहां से मर्जी बनाओ, हलाल है हराम है। फिर इंसान ये कहता है कि जो मर्जी करो, यहाँ पे मजे नहीं किए तो फिर और क्या, लाइफ तो एक दफा मिलनी है, बस मजा करो बस। तो जब दिल ने दुनिया की मोहब्बत गढ़ जाए ना, तो फिर ये ख्याल नहीं रहता कि मेरा रब किस चीज से राजी होता है, मेरा पैर कहीं फिसल ना जाए, मैं अल्लाह की नजरों से कहीं गिर ना जाऊं, कहीं कोई मेरा कदम ऐसा ना उठ जाए जिससे कि मैं अल्लाह ताला के सामने जलील हो जाऊं, कहीं निगाहें मेरी ऐसे ना उठे कि अल्लाह की निगाहों में जच ना सकूं। तो तकवा तो अपने आप को बस बचा बचा के चलना है इस जिंदगी में। ऐसे ये कहा गया ना कि तकवा ये भी है कि इंसान अपने आप को बुराइयों से बचा ले, तकवा ये भी है कि इंसान अपने आप को अल्लाह के हुक्मों के ऊपर चलाए, हराम से बचे, बुराई से बचे। इवन मैंने आपको कहा ना तकवा के भी लेवल्स हैं, इवन तकवा ये भी है कि नेकी करने के बाद ये खटका लगा रहे पता नहीं मेरी नेकी कबूल भी हुई या नहीं। यानी गुनाहों का तो हमें पता ना, गुनाह मतलब है बुराइयां, वो तो है ही बुराई। नेकी करके इंसान अक्सर नहीं सोचता लेकिन जब ये अंदर खटका रहता है ना, पता नहीं कबूल हुई कि नहीं, पता नहीं अल्लाह कबूल कर लेना, ये जो तड़प अंदर है ना, ये सिर्फ मुत्तकी को मिल सकती है, क्योंकि उसको पता है ना नेकी बड़ी सेंसिटिव चीज है, ये एक बोल पे जाया हो सकती है, एक रियाकारी पे जाया हो सकती है, तकब्बुर पे जाया हो सकती है, नीयत में जरा सा फर्क आ जाए नेकी गई, तो वो तो बड़ा इसको देख देख के चलता है। तकवा के बारे में ये भी कहा गया कि इंसान की तबीयत गुनाह से नफरत करे, नेकी की तरफ उसकी रगबत हो, ये तकवा है। तो तकवा ऐसी चीज है कि यानी जैसे मैंने आपको कहा कि इसके लेवल्स हैं, एक इनिशियल लेवल है, उस इनिशियल लेवल में वो ये भी हो सकता है कि जिसके अंदर अभी सिर्फ वो गैर मुस्लिम है, लेकिन अभी उसके अंदर सिर्फ ये चीज है कि मैं हक को तलाश करूं, मैंने बुराई से बचना है, मैंने कोई देखना है कि सही चीज किया है। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, कभी उन्होंने जहालत के जमाने में भी कभी उन्होंने बुत परस्ती नहीं की थी। तो तकवा वो चीज है कि इंसान के अंदर ये तड़प होना कि मुझे राह मिले। देखिए ना, तभी तो आप इस कुरान से भी कोई फायदा उठा सकेंगे, हिदायत ले सकेंगे। अगर आपको परवाह ही नहीं है, अल्लाह ताला कुछ भी कहता है मुझे क्या चीज, मैंने तो बस अपनी जिंदगी गुजारनी है, वो दीन आपके लिए क्या है, अगर बस एक सेकेंडरी सी चीज है, बस जहां सब कुछ और चल रहा है, तो बस दीन भी एक साइड की चीज है, बस साइड की चीज नहीं। जो इस दीन को सीरियस लेते हैं, जिनको ये परवाह है कि मेरा अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरी क्या वैल्यू है अल्लाह की नजर में, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे किसी काम से अल्लाह मुझसे नाराज हो जाए, वो इस कुरान से हिदायत ले सकते हैं। वो वाकई फिर चलेंगे भी, उनको जब कुरान रास्ता बताएगा तो वो कहेंगे, वो तो पहले ही तलाश में है ना, वो कहेंगे बस हम चले इस रास्ते पर, कि बस हमें तो चाहिए वो रास्ता जिससे अल्लाह हमसे खुश हो जाए। वो शौरी जिंदगी गुजारते हैं, फिर उनकी बस जिंदगी का एम ही यही है ना कि बस अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह ताला हमसे कहीं नाराज ना हो जाए। तो देखें फिर तकवा कहने को क्या है, बस महबूब की मोहब्बत का नाम है। जब इंसान फिर बस जीता ही अल्लाह के लिए है, ये बस उसकी नजर में मैं इस वक्त कैसा हूं, फूंक फूंक के कदम रखूं, कोई ना कदम ऐसा उठ जाए अल्लाह ना नाराज हो जाए, ये खाऊं कि नहीं अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, देखो अल्लाह मुझे देख रहा है, वो देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूं, कहीं अल्लाह ताला को ये बात ना पसंद आई तो क्या होगा। ठीक है, तो ये तकवा कोई ऐसी कोई हवाई चीज नहीं है जो कहीं से आनी है, तकवा इंसान अटेन कर सकता है, बस ये जिसको लिखा होता है गॉड कॉन्शियसनेस, तो यही तकवा है ना। तो ये हिदायत है, हिदायत का माना, वैसे तो हिदायत कभी तो दिल में ईमान के आ जाने का नाम होता है, ये भी हिदायत होती है, कभी हिदायत का मतलब ये है कि इंसान उस रास्ते के ऊपर चल पड़े, कभी कभी है ना कि इंसान को रास्ता नजर आ जाए, ये भी हिदायत है, कभी इंसान उस रास्ते पर चल पड़े वो भी हिदायत। तो एक गैर मुस्लिम के लिए हिदायत क्या है कि रास्ता दिखा देती है, एक मुत्तकी के लिए हिदायत क्या है कि वो रास्ते पे चल भी पड़ता है। इन लोगों के लिए यानी पहले हम अपने अंदर मुत्तकी वाली कम अज कम इनिशियल सिफात लेकर आए, कम अज कम इनिशियल सिफात जो आगे आ रही है, ताकि फिर जब ये सिफात हमारे अंदर होंगी तो तब हम इस कुरान से फायदा उठा सकेंगे। क्या क्या फायदा उठाना है हमने, फायदा तो हम कहते हैं हम अभी भी उठा रहे हैं, हम पढ़ते तो हैं कुरान, नहीं फायदा असल कुरान से क्या उठाना है, जो इसका मकसद है हुदन लिल मुत्तकीन। यहां से क्या पता चला, क्या मकसद है कुरान का, हुदन हिदायत। हम क्या समझते हैं कुरान का मकसद क्या उतरने का, कि जब हम नए घर में मूव हो तो कुरान खानी कराएं, जब कोई फौत हो जाए तो उस वक्त कुरान खानी कराएं, फिर इसी तरह जब कोई प्रॉब्लम हो तो तब कुरान खानियां हों, इस तरह हम ये समझते हैं कि जब दुल्हन को रुखसत करने लगे तो उसके साये में कुरान के हम रुखसत करें, ये हमारे सारे मकासद हैं कुरान से, या इसके तावीज बना बना के तो फिर हम गले में लटका लें, ये हुदन है। हम सोचते हैं कि इसका मकसद है, हालांकि इसका मकसद क्या है, हुदन हिदायत। और हिदायत कौन पा सकता है, आप खुद मुझे बताएं, हिदायत जैसे हमने कहा गाइडेंस, गाइडेंस कौन पा सकता है? जो गाइडेंस की इंस्ट्रक्शंस को समझ सकता है। आपका जीपीएस ही अगर फ्रेंच में है, आपको रास्ता बताने वाला ही कोई ऐसी जुबान बोल रहा है स्पेनिश जो कि आपको समझ नहीं आती, आप क्या उस रास्ते को फॉलो करेंगे? इसीलिए जरूरी है कि हम इस कुरान को कुरान की लैंग्वेज में समझें, हम जाने कि कुरान हमें क्या हिदायत दे रहा है। हिदायत जो है ना, ये हदिया, हदिया आप समझते हैं, हदिया तोहफे को कहते हैं, हिदायत भी एक तोहफा होती है अल्लाह की तरफ से। दोनों का सेम ही रूट है, ये एक तोहफा है अल्लाह की तरफ से। लेकिन अगर हम इसकी ना कदरी करें और इसको सारी चीजों के लिए और इस्तेमाल करें, जिन भूत भगाने के लिए और पता नहीं क्या क्या और चीजें करने के लिए, और हिदायत ही ना ले, तो सबसे पहले जब कुरान खोलते ही है तो बता दिया गया हुदन लिल मुत्तकीन। ये किताब क्या है? ये हुदन लिल मुत्तकीन है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। फिर हमने हर चीज के लिए इसको इस्तेमाल किया, हिदायत लेने के लिए नहीं किया, क्योंकि शायद हम ये समझते हैं हमें हिदायत चाहिए ही नहीं, या शायद हम ये समझते हैं कि कुरान की हिदायत मेरे लिए नहीं है, औरों के लिए होगी, हम तो बड़े गुनाहगार हैं, हमारे लिए नहीं। वाकई फिर कुरान कहता है कि जो जिसको ये परवाह ही नहीं है ना कि अल्लाह क्या मेरे बारे में सोचता है, अल्लाह ताला कि हाँ मेरी क्या हैसियत है, मेरे मेरे किसी काम से अल्लाह ना नाराज हो जाए, जिसको ये परवाह ही नहीं है ना, इसको क्या हिदायत मिलेगी? दे डोंट केयर, अल्लाह जो भी सोचता रहे मेरे बारे में, जब ये केयर ही नहीं है और बस सिर्फ ये है कि हाँ इस कुरान से आज मेरा मसला हल हो जाए, आज ये वजीफा कर लूं इससे, हाँ हाँ जॉब नहीं है हस्बैंड की उसके लिए निकाल लूँ, फलानी चीज करने के लिए निकाल लूँ, पता नहीं क्या क्या चीजें इसी कुरान से लोग फाले निकालते हैं, क्या क्या करते हैं, जब इसको बस इस काम के लिए रखा हुआ है कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आए तो हम तब इसको जल्दी से खोल के इसको जंतर मंतर के तौर पर पढ़े, तो क्या हिदायत मिलेगी? अल्लाह अकबर, क्या आपको पता है कि मुशरिकीन मक्का भी जब किसी मुसीबत में फंस जाते थे तब वो भी अल्लाह को पुकारने लगते थे? हम मुसलमान हैं, क्या हमने भी अल्लाह ताला के साथ ऐसा ही ताल्लुक रखना है जैसे वो मुशरिक रखते थे? इतना हद तक तो उनका भी ताल्लुक था जो अल्लाह को मानते ही नहीं थे, वो भी कहते थे अल्लाह ही बचा सकता है जब उनके पास कोई ऐसी मुसीबत आती थी। क्या हमारे भी यही रवैये रहेंगे कि अल्लाह कब याद आता है? जब कोई मसला आ जाए, जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, तब कुरान भी खुल रहे हैं, तब वजीफे भी हो रहे हैं, तब तस्बीहां भी हो रही हैं। मुत्तकी तो ऐसा नहीं होता, मुत्तकी कैसा होता है?